उत्सव मनाए जाते हैं। कई जगह पर दशहरा ग्राउंड्स या रामलीला मैदान, कई नगरों में शहरों में आपको मिलेंगे। दिल्ली में भी हम पिछले 20-25 वर्षों से देख ही रहे हैं। लगभग सभी जहां वहां की जो भी खाली मैदान है या क्रीडांगन है या कोई उद्यान है, जहां तहां वहां का रामलीला मैदान भी प्रसिद्ध है, वहां लाखों की संख्या में राम भक्त एकत्रित होते हैं। रामलीलाओं का मंचन भी होता रहता है वैसे नवरात्रि के उपलक्ष्य में। राम की पूजा कुछ अधिक वहां, और यह और ही कुछ अधिक हो रहा है। इस देवी के पति श्री राम, उनकी पूजा का ये समय है, उनके स्मरण का ये समय है। तो उत्तर प्रदेश में, जैसे बंगाल प्रदेश में और भी बुरा हाल है। राम का शायद लगभग ही कोई स्मरण करता है इन दिनों में। तो आज के दिन जो हुआ दिल्ली में, जो हम लोग अनुभव करते आए हैं, रामलीलाओं का मंचन भी होता है। और आज के दिन रावण की अंत्येष्टि होती है। रावण को दफनाया जाता है, रावण को जलाया जाता है। और उस के दर्शन हेतु लाखों की संख्या में राम भक्त एकत्रित होते हैं। और राम को जलते हुए और जलाते हुए, कोई जलाते हैं, कोई देखते हैं राम रावण को जलते हुए, तो लोग खुशियां मनाते हैं, फटाके बजते हैं, लोग नाचते हैं, कूदते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जय घोष होता है राम के नाम का। हरि गौर हरि। तो आज जो लीला हुई, रावण का वध हुआ। हरि बहो, आप प्रसन्न नहीं हो? या प्रसन्न नहीं हो तो आप किस पार्टी के हो? गौर हरि। रावण के लोक रावण 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 को कहा है, उसी दिन कहा गया। और मंदोदरी इत्यादि रावण की कई सारी पत्नियां भी थी, और भी राक्षसियां वहां एकत्रित हुई उस युद्ध भूमि में, और रावण को पुकारे, संबोधित करे, लोक रावण रावण, आप कैसे हो रावण? औरों को रुलाने वाले हे रावण, ये रावण की विशेषता है। रावण की करतूत, रावण का सारा कार्यकलाप व्यवहार ऐसा रहा जिससे सारी जनता दुखी रोती हुई, जनता और भी जनता जनार्दन भी, जो श्रीलंका के जनता ही नहीं वे पहुंच गए, वैसे पंचवटी तक आए थे। किसके रावण? आपके रावण, मेरे रावण, रावण रावण आए थे, आपके तो रावण नहीं। तो हुआ तो वो रावण, औरों को रुलाने वाला वो रावण, उसका तो वध किए भगवान आज के दिन 9 लाख वर्ष पूर्व। आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं, हाँ हाँ, उस रावण को पुनः हम लोग दफनाते हैं, दफनाते हैं नहीं, अंत्येष्टि करते, उसको जलाते हैं, उसकी बड़ी मूर्ति बना के उसको आग लगाते हैं। उसी लीला की 9 लाख वर्ष प्राचीन इस लीला की पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं या उसको देखते हैं, उसको घटित हमारे आंखों के समक्ष घटते हुए। तो उसी के साथ और एक ही नहीं वैसे अनेक रावणों का वध होता है या होने की संभावना या आशा रखी जाती है।
कौन कहां है,
कहां छुपे हैं इतने सारे रावण, क्या आप जानते हो? कोई है, कोई माई का लाल, हाँ, आ अपने अंदर समाज में, हृदय में और बुद्धि में, किसके? ठीक है, एक पॉलिटिशियन, हाँ, औरों के, समाज के, पॉलिटिशियन के, और हमारे, जय श्री राम। हम उंगली करके दिखाते हैं औरों की ओर, तो एक उंगली औरों की ओर, हमारी ओर कितनी? 3 है, बराबर 3 उंगली। हाँ हाँ, हमें छिपे हुए रावण को, हमारे हृदय का कहिए, हमारे मन का कहिए, इंद्रियों का सहारा लिए हुए, और हृदय नाम की गुफा छिपे हुए, हृदय को गुफा कहा है, केव कहा है शास्त्र में, उसमें छिपा हुआ है रावण। तो जब हम लोग राम रावण के वध के लीला किए, उसका श्रवण करते हैं, उसी के साथ वध होता है हम में छिपे हुए रावण का, क्या समझे? आप समझे? इसी उद्देश्य हम लोग, या एक उद्देश्य कहिए, या ये फल कहिए, लाभ कहिए, आज के इस पर्व को जो हम मनाते हैं उसके पीछे का ये उद्देश्य। उस रावण का वध आप नहीं करना चाहते हो तो वैसे आपको यहां नहीं आना चाहिए था, या आप यहां गलती से आ भी गए तो इस वक्त आपको यहाँ से पलायन करने का समय है, कहिए। नहीं तो रावण का वध होने ही वाला है। आप तैयार हो उस रावण के वध के लिए? कितने चाहते हैं? कुछ तो सोच ही रहे हैं। रामायण भगवान श्री राम की लीला कथा है। वाल्मीकि मुनि जिसकी रचना किए, इसमें कई सारे सुंदर सुंदर कांड है, और एक कांड का नाम भी वैसे सुंदर कांड ही है। खंड कहिए या श्रीमद् भागवत में जिसको हम स्कंध कहते हैं, द्वादश स्कंध है, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, तो रामायण में है 7 कांड और 24,000 श्लोक संख्या। तो ऐसे सुंदर मधुर रामायण की कथा है ये। उसमें से कुछ ही अंश हम यह कह पाएंगे। जो भी भगवान बुलवाएंगे अब हमसे, हम कहते जाएंगे। निवेदन है। ओके, थैंक यू। तो राम राम को अयोध्या से हमें लंका तक पहुंचाना है। राम तो पहुंच ही गए थे, तो हम कुछ तो राम जब जा ही रहे थे, साथ में किसी को नहीं ले जाना चाह रहे थे, लेकिन तैयार हुई सीता और फिर तैयार हुए लक्ष्मण भी, और जब राम जाने लगे तो चल के जाना चाहिए था पैदल ही, लेकिन राजा दशरथ ने सुमंत्र नाम के मंत्री को तैयार आप रथ में बिठा के राम को वन में ले जाना या वन में पहुंचा देना। तो राम बैठे हैं सीता और लक्ष्मण के साथ रथ में, तो राम जो सारे नगरवासियों के प्राण ही थे, प्राणनाथ ही थे, तो राम जब जा रहे थे तो सभी ने सोचा कि कौन जा रहे हैं, हमारे प्राण ही जा रहे हैं। तो राम के पीछे पीछे, राम के रथ के पीछे पीछे सारी जनता भी जा रही थी। वहां के कुछ पौधे कुछ वृक्ष वो सोच रहे थे कितने भाग्यशाली है मनुष्य, राम के साथ वे तो जा सकते हैं, लेकिन हम बेचारे वृक्ष नग, हमको नग कहते हैं, हम तो यहां से हिल भी नहीं सकते, जाना संभव होता तो हम भी राम के साथ जाते। ऐसे उस नगरी के वृक्ष भी सोच रहे थे। तो सभी के विरह की व्यथा की कुछ कल्पना ही हम उन वृक्षों के वचनों से हम कर सकते हैं। वन में गए, रात्रि को एक स्थान पर पड़ा हुआ, दिन भर चल रहे थे अयोध्यावासी, तो हुआ रात्रि को सोए, कोई डिनर कोई न तो खाया न तो पिया, सो गए। राम मध्य रात्रि को ही सभी को सोते हुए जब देखा, राम ने सोचा कि ये समय है हम आगे प्रस्थान का, रथ को तैयार किए और रातों रात मध्य रात्रि में ही प्रभु ने प्रस्थान किया। जनता जब उठी तो हुआ, और राम को जब नहीं देखा तो हुआ विरह की व्यथा से वो त्रस्त हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान का रथ अयोध्या की दिशा में वहां पर देखा, कुछ दूरी पर देख रहे थे, तो सभी ने सोचा ओ अयोध्या लौटे हैं श्री राम। तो सभी उठे और दौड़ने लगे, लेकिन राम वैसे कहां अयोध्या लौटने वाले थोड़े ही थे। एक वचनी राम जो थे, वनवास का व्रत जो लिया था राम ने, राम तो और ही दिशा से आगे प्रस्थान कर चुके थे। गंगा के तट पर पहुंचते हैं, वहां से सुमंत्र को वापस भेजते हैं। इस आदेश का पालन करना कठिन था किंतु करना ही पड़ा, और उसी स्थान पर नदी को पार करने के लिए नाविक तैयार थे। कौन थे? केवट। उनका नाम का नाम भी था। तो उस नौका में बैठे श्री राम, उनकी नौका में बैठे। तो उस नाविक ने कहा, क्या नाम? केवट। और भी एक नाम है रावण में, भूल गया। तो कह रहे थे कि आओ प्रभु राम, आपका कार्य और मेरा कार्य वैसे एक जैसा ही है। लक्ष्मण ने जब ये बात सुनी तो बड़े क्रोधित हुए, क्या समझे तुम? तुम्हारे कार्य को मेरे श्री राम के कार्य के तुल्य समझते हो? तो नाविक ने समझाया, जैसे राम क्या करते हैं, बेड़ा पार करते हैं, उतार संसार के पार पहुंचाते, मैं प्रवासियों को नदी से पार करता हूं, तो एक एक जैसा कार्य हुआ कि नहीं? मैं तो नदी के पार ही करता हूं, तो ये बेड़ा संसार के परे पहुंचाते हैं, भवसागर के परे पहुंचाते हैं श्री राम, या श्री राम का नाम। जय श्री राम। भगवान वहां से प्रयागराज पहुंचते हैं, त्रिवेणी संगम जहां है वह भरद्वाज मुनि का आश्रम। राम बड़े ही विनयी और नम्र, संतों के चरणों में तो ऐसे ही झुक जाते हैं, दंडवत करते हैं। भरद्वाज मुनि को दंडवत किए, तीनों बैठे राम सीता लक्ष्मण उनके चरणों में, कई सारी बातें उपदेश की आते सुनी और सीता को कहे तुम जब आगे बढ़ोगी तो अनुसया से तुम्हारा मिलन होगा, तो उसे कुछ उपदेश सुनना, विशेष आदेश उपदेश करेगी अनुसया तुमको अत्रि की धर्मपत्नी। भगवान वहां से आगे प्रस्थान करते हैं। वह किसी स्थान पर निवास भी करना चाह रहे थे। रास्ते में वाल्मीकि मुनि का आश्रम आता है। अब ये वाल्मीकि बने थे, मरा 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 जब कोई अपराधी होता है और उन्होंने कितने सारे घोर अपराध किए हुए थे, लेकिन राम का नाम इतना पवित्र है, पावन है, और नारद मुनि ने ये मंत्र दिया, राम नाम का मंत्र नारद मुनि से प्राप्त किए वाल्मीकि, रत्नाकर नाम था उनका, यस रत्नाकर, आप रामायण के ज्ञाता, मैं भी जितना अनाड़ी हूं। तो पहले का नाम रत्नाकर ऐसा, तो जहां राम नाम का जप करते हुए बैठे थे वही वाल्मीकि मराठी में वारुण कहते एंट हिल, कई सारी चीटियां रेंग रही थी उनके शरीर पर और केवल हड्डियां बची हुई थी, लेकिन राम राम राम, तो वाल्मीकि के जो द्वार होते हैं ना, कई गेट्स होते हैं स्पीकर की तरह, तो वहां से ध्वनि निकल रही थी, कैसी, राम जय श्री राम। तो ये ध्वनि सुनी थी किसने, नारद जी सुने, उनको स्मा मैंने तो राम नाम की दीक्षा दी थी, मंत्र दिया था ने शिष्य को, तो चलो देखते क्या कैसी प्रगति है। तो उन वे जब उतरे और देखे तो ऐसी स्थिति थी, कुछ हड्डियां कुछ ढांचा स्केलेटन ही बचा हुआ था, आत्मा तो कोर्स वहां थी। पुकार कौन रहा था, कौन पुकारता है, आत्मा पुकारती है भगवान, मुख भी नहीं कंठ भी नहीं, कंठ और मुख भी वैसे मिट्टी से ही बने हुए हैं, मृत जो है डेड है, इसको हिलाने वाला आत्मा है। तो आत्मा तो वहां थी, आत्मा बोल रही थी, हम भी जब बोलते हैं तो कौन बोलता है, आत्मा, और जब सुनते हैं तो आत्मा सुनता है, आत्मा सुनना चाहता है राम का नाम, आत्मा सुनना चाहता है कृष्ण का नाम, लेकिन हम और ही कुछ सुनाते हैं तो आत्मा को होती है उल्टी, वाह। और जब राम नाम लेते हैं तो आत्मा के हम लोग महात्मा बन जाते हैं, क्या हम परमात्मा बन सकते हैं, कभी नहीं, जो हम नहीं है वो हम नहीं बन सकते, ऐसे प्रभुपाद ने कहा, बड़ा सरल भाषा में कहा, जो हम नहीं है वो हम नहीं बन सकते, तो हम आत्मा हैं, आत्मा ही बनेंगे, आत्मा ही बन के रहेंगे, आत्मा का महान आत्मा, मोटा आत्मा, हृष्ट पुष्ट आत्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो और ही व्यक्ति है, और व्यक्तित्व अलग है, भगवान है परमात्मा, हम उनके अंश है, भगवान अंशी है। तो यही वाल्मीकि, जो आगे चल के राम चरित्र लिखेंगे, राम के वनवास के उपरांत कुछ 14 वर्षों के बाद अब रामायण की रचना होगी, तो ऐसे ही वाल्मीकि मुनि के आश्रम में श्री राम गए, पुनः प्रणाम, जिज्ञासा, स्तुति के वचन राम कहते हैं, और राम पूछते हैं वाल्मीकि से, क्या बता सकते हो कि हम लोग या मैं कहां रह सकता हूं? ऐसा प्रश्न राम पूछे, तो इसके उत्तर में वाल्मीकि जी पहले पूछते हैं, प्रभु जी आप पहले ये बताइए कि, फिर मुझे थोड़ा आसान होगा जवाब देना, आप क्या बता सकते हो कि आप कहां नहीं रहते हो? उस स्थान का मुझे पता दीजिए, एड्रेस दीजिए कि जहां आप नहीं रहते हो, तो फिर मैं कहूंगा कि आप वहां भी रहो जहां आप वहां नहीं रहते हो। बड़े चालाकी से प्रश्न भी प्रत्युत्तर हुआ, लेकिन पुनः वाल्मीकि पूछते, आपने पूछा ही है कि आप कहां रह सकते हो, तो प्रभु मेरा आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आप जरूर अपने भक्तों के हृदय प्रांगण में रहना। जय श्री राम। मतलब आप सभी भक्तों के हृदय में राम बसे, ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन वाल्मीकि जी का रहा। तो आगे बढ़ते हैं श्री राम, ये स्थान होगा जहां अब राम पहुंचेंगे, प्रयाग से कुछ 101 किलोमीटर दक्षिण में ही हो सकता है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में हो सकता है, वो स्थान है चित्रकूट। राम पहुंच गए, कहां पहुंच गए? चित्रकूट पहुंचे। वहां मंदाकिनी नाम की नदी बहती थी और आज भी वहां वही नदी बहती है। हम लोग, आप लोग, मैं गया था कुछ ही वर्ष पूर्व, मैंने भी देखा उस मंदाकिनी नदी का, मैंने दर्शन किया और कितना स्वच्छ जल, मैंने ऐसा स्वच्छ जल शायद ही इन दिनों में कहीं देखने को मिलता है, जो मैंने मंदाकिनी को देख के अनुभव की, इतना स्वच्छ था। इस जल में स्वच्छंद विहार कर रही थी कई सारी सुंदर सुंदर मछलियां या उनके समूह, और कितनी गहराई पर वो तैर रही थी, स्विमिंग, लेकिन उनका दर्शन संभव था जल के स्वच्छ और साथ ही साथ अर्थात पवित्र भी होने के कारण। तो वहां श्री राम रहे, एक विशाल पहाड़ है, उस पहाड़ पर राम रहते थे। कहते हैं कि वो पहाड़ इतना ऊंचा था, प्रयागराज से त्रिवेणी संगम से, जो वहां से ये पहाड़ 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां से दर्शन वो दिखाई देता था। जब भरत जी अब कुछ समय के उपरांत वही उन्हीं भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने देखा है, सुना है वेयर अबाउट्स ऑफ श्री राम? हा हा हा, वो जो पहाड़ है, हाँ वो पहाड़, वहां जाओ, तो भरद्वाज जी को संकेत मिला था, उन्होंने भी कुछ मार्गदर्शन किया होगा कहाँ रह सकते हो, आओ आगे बढ़ो, पहाड़ है वहाँ, चित्रकूट है, तो इतना ऊंचा पहाड़ उन दिनों में था, अब उतना ऊंचा नहीं है। उस पहाड़ की परिक्रमा होती, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा होती है, और भी कई पहाड़ों की परिक्रमा होती रहती हमारे देश में, तो वो भी एक पहाड़ है चित्रकूट में, जहाँ बड़ी संख्या में लोग परिक्रमा करते उस पहाड़ की, जिस पहाड़ पर भगवान का निवास। वैसे बहुत वर्ष रहे श्री राम चित्रकूट में, 14 वर्षों का जो वनवास का काल, उसमें से कुछ 11-12 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे। वहीं पर मिलन होता है भरत जी का, भरत और राम का। हाँ, मैं लेके आता हूं, कैके के साथ बड़ा युद्ध करके, बड़ा क्रोध प्रदर्शित करके भरत जी राम को ढूंढने के लिए निकले और ढूंढे राम को चित्रकूट में। बहुत निवेदन किया प्रभु के श्री चरणों में, लेकिन राम लौटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पादुका दे दी, हाँ इनको ले जा सकते हो। तो वहां पर यह दोनों भाइयों का यह संवाद, उन दोनों भाइयों का जो मिलन हुआ है, गाढ़ आलिंगन दोनों ने दिया और दोनों ने जो आंसू वहां बहाए, जो वचन कहे एक दूसरों के प्रति, प्रेम भरे, उसे वहां के पत्थर भी पिघल गए, जिसको हम आज भी जाके देख सकते हैं। उस कठिन जो पत्थर होते हैं वो पिघल गए, तो राम और भरत उन्हीं पत्थरों पर खड़े थे, तो राम और भरत के चरणों के चिन्ह उन पत्थरों पर आज भी है। तो राम वहां से और आगे बढ़ते हैं दक्षिण की ओर, दंडकारण्य में उनका प्रवेश होता है। भगवान अब कुछ मध्य भारत में है। रामटेक नाम सुने आप लोग? रामटेक का नाम सुने? विदर्भ क्षेत्र में है, नागपुर से कुछ 40 किलोमीटर ही दूर एक पहाड़ी क्षेत्र है, विशेष पहाड़ भी है, और वहां राम पहुंचे। सुतीक्ष्ण आदि कई ऋषि मुनियों से वहां मिले भगवान। उन्होंने ये देखा कि वहां मनुष्यों के हड्डियां, कंकाल कहते हैं, ये इतस्तत सर्वत्र फैले हुए थे, गिरे हुए थे, जहां भी जाते थे उधर ये किसकी हड्डियां, ये क्या है, ये क्या है। तो उनको समाचार दिया वहां के जो बचे हुए शेष जो ऋषि मुनि उस स्थान के, ये तो महात्माओं के, महामुनियों के, ये ऐसी स्थिति की राक्षसों ने। तो राम ने ये जो समाचार सुना, राम बड़े क्रोधित हुए। राम ने अपना धनुष बाण उठाया और राम ने प्रतिज्ञा की, इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से रहित मुक्त करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जहां ली भगवान ने, उस स्थान का नाम है रामटेक, मतलब राम का संकल्प। राम ने संकल्प जहां किया, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करूंगा मैं। वहां से श्री राम और आगे बढ़ते हैं, दक्षिण की ओर नहीं, कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर, और पहुंच जाते हैं गोदावरी के तट पर। उस स्थान पंचवटी आज भी कहलाता है। पंचवटी जहां पांच क्या है, वट वृक्ष है, उस समय के 9 लाख वर्ष पुराने वो वट वृक्ष आज भी साक्षी है भगवान के लीलाओं के। गोदावरी के तट पर पुनः प्रभु ने जैसे पर्णकुटी बनाई थी, उन्होंने चित्रकूट में यहां भी पर्णकुटी बनाए और प्रभु राम वहां रहते थे। वैसे वहां पहुंच ही रहे थे तो एक पक्षी को, पंछी को देखा उन्होंने। शुरुआत में तो आह लक्ष्मण, देखो कोई राक्षस है। वैसे वो राक्षस नहीं था, वे थे जटायु। जटायु ने अपना सारा परिचय दिया और दशरथ के साथ अपना पुराना प्राचीन प्रेम भरा संबंध का भी परिचय दिया, और मैं आपकी रक्षा करूंगा ऐसा वादा भी किया, संकल्प भी किया जटायु ने। तो जटायु भी साथ में हो गए उनके, हाँ राम थे, लक्ष्मण, सीता और जटायु भी कुछ उनकी रक्षा कर रहे थे उस क्षेत्र में। तो वहां पर आ जाती है, हम लोग थोड़ा दौड़ रहे हैं रामायण में से, वहां पहुंच गई। बड़े लंबे लंबे नाखून वाली कौन, शूर्पनखा, जिसके नाखून कैसे थे, अपने नाखूनों की ओर नहीं देखना भी, जैसे सूप होता है ऐसी कुछ माताएं हमने देखी है, लंबे नाखून वाली राक्षसी। तो उसी परंपरा शूर्पनखा, जैसे उसका नाम ही ऐसे नाखून थे उसके, मतलब यहाँ पांच सूप, यहाँ एक सूप 1 2 3 4 5 और यस में पांच ऐसे सूप। तो उसका प्रस्ताव आप सुने हो, वैसे उसने आपको नहीं सुनाया, उसने तो राम को सुनाया। फिर राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, ये बैक एंड फोर चल ही रहा था, बेचारी का हाल हो रहा था, लेकिन वो तो डाकिनी खून चूसने वाली जा नहीं रही थी। तरह लक्ष्मण ने अपनी तलवार से या बाण से सही क्या किया, उसका कान भी कहते हैं और साथ ही साथ नाक भी काट दिया, और नाक जहां गिरा उस स्थान का नाम नासिक हुआ। कितना पवित्र नाम है, पंचवटी तो कुछ ठीक है, नासिका। तो और कई कांड हुए, और फिर पहुंच गई श्रीलंका शूर्पनखा, और रावण को उत्तेजित की, वो सीता तो तुम्हारे लिए वैसे सुयोग्य पत्नी होगी, ये दिमाग में बात, और बदला भी लेना था ऐसे ही राम का, ऐसे पुरुष का जिसने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान किया, तो रावण तैयारी करने लगा सीता का हरण अपहरण की तैयारी। तो उसे वो अकेला नहीं ये कार्य सिद्ध होता, उससे तो मरीचि नाम के राक्षस मित्र के पास ही पहुंच गया। मरीचि ने बिल्कुल इनका नहीं 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 नो वे, नहीं आप जा सकते हो। तो वैसे भगवान की शूरता और वीरता का वर्णन ये मरीचि करता है, वैसे उसने अनुभव किया हुआ था। एक समय ये मरीचि थे सिद्ध आश्रम अयोध्या से कुछ दूरी पर, जहां किसका आश्रम, विश्वामित्र, विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर थे राम और लक्ष्मण। वहां स्वाहा 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 यज्ञ हुआ करते थे, क्योंकि वो युग कौन सा था, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति या प्रसन्नता कैसे संभव हुआ करती थी, त्रेतायाम यजतो मखय, यज्ञ हुआ करते थे। तो यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण की नियुक्ति हुई थी। तो ताड़का का वध किए भगवान, जैसे कृष्ण लीला में पहले व्यक्ति का वध किया, वो व्यक्ति थी कौन, पूतना। और राम की लीला में भी एक नंबर में ताड़का नाम के राक्षसी का वध भगवान किए, और मरीचि का नंबर भी लगना ही था, लेकिन वध नहीं किए, अपने बाण से भगवान ने उस मरीचि को ऐसे उड़ा दिए, पहुंचा दिए कहां, और लैंडिंग किसका, वहां किसका, वहां उसका, कहा हुआ लंका में जा गिरा। तो वो जानता था राम का नाम, अरे नहीं 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 कांपने, प्लीज तुम जा सकते हो। और भी कुछ अनुभव उसने सुनाए, तो जाने के लिए जब तैयार, क्योंकि मरीचि के पास वैसी ऐसी कुछ कलाएं थी, अपने रूप को बदल सकता था, जो चाहे रूप धारण कर सकता था। तो रावण का विचार था कि ये बनेगा हरिन बनेगा, तो सीता देखेगी, फिर राम पीछा करेंगे और फिर मैं आ जाऊंगा, ऐसा सारा स्ट्रेटेजी था उसका, रावण का। तो इसीलिए मरीचि की आवश्यकता थी। तो मरीचि जब जाने के लिए तैयार नहीं था, तो रावण ने कहा बदमाश, तो उसका वही गला दबाना कहो या जिस ढंग से, उसकी जान लेने के लिए रावण तैयार जब हुआ, तो मरीचि ने ठीक है हम लोग जाते हैं, चलिए लेट्स गो। क्योंकि मरीचि ने सोचा कि अरे मरना तो है ही, वहां जाके मुझे ये मारने वाला ही है, और नहीं जाऊंगा तो यही पर मुझे मारेगा, ये जो है सामने ये मुझे यही पर मार देगा, तो अच्छा है कि मैं किसके हाथ से मरूं, भगवान के हाथ से मरूं, मरना है तो भगवान के हाथ से मरते चलो। तो तैयार हूं, तो ये टीम आ गई, चांडाल चौकड़ी कहिए, पहुंच गई वहां पर। तो एक बन गए साधु बाबा और दूसरे बन गए हिरण, और फिर आप जानते हो लक्ष्मण, ये आवाज किसकी थी, मरीचि की थी। तो ऐसे भ्रमित किया, भ्रम पैदा किया, उत्पन्न किया और इसका फल राम तो गए ही थे, लक्ष्मण को भी जाना पड़ा और इतने में भिक्षाम दे ही, क्या दे दो, भिक्षा दे दो। तो सीता को ट्रेनिंग ऐसा था, कोई साधु आए हैं और भिक्षा नहीं देना ये तो संभव है नहीं, तो देने के लिए तैयार हुई तो ये तो कई मुख में क्या राम और बगल में छुरी वाला मामला था। तो उन्होंने अपना मूल रूप दिखाया और विमान में बिठा के अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान जब कर ही रहा था, कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ा था आकाश मार्ग से, तो आए कौन आए, जटायु आए। जटायु के गरुड़ है, जय हो, आ गए। तो दोनों का आकाश में ही पूरा विरोध किया पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ, लेकिन रावण जितना बलवान था और ये बूढ़े भी थे ये जटायु अब, तो इनके पंख तोड़े, पराजित हुए और धड़ाम करके जमीन पर गिरे। तो इतने में वैसे राम और लक्ष्मण अपने आश्रम पर्णकुटी में भी लौटे, वहां सीता नहीं है, तो अब सीता का खोज हो रहा है, सीते करके जहां तहां जहां भी जाते हैं सीते 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 ये मंत्र पुकार चल रही है। तो उस खोज में जब निकले हुए राम और लक्ष्मण, उन्होंने देखा इस जटायु को देखा और खून से सारा उसका शरीर लथपथ हुआ था। तो पहले तो हुआ राम और लक्ष्मण, इसी का तो कार्य है, इसी ने तो खाया सीता को, ये खून देखो अभी तक उसके चोच में लगा हुआ है, ऐसे पहले सोचे, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो समझ गए सारी कहानी इस जटायु ने सुनाई। और ये वार्तालाप कहना वृत्तांत कहना कुछ समाप्त हो ही रहा था, तो उसी के साथ राम का दर्शन करते हुए और राम के गोद में लेटा हुआ ये पंछी राम के मुखमंडल का दर्शन करते हुए और मुख से राम कहते हुए उसने आखिरी सांस ली। मरना है तो ऐसे मरे, ये मरने की कला है, भाग्यवान ऐसे मरते हैं जैसे जटायु की मृत्यु हुई। जटायु की मृत्यु क्या, जटायु तो अमर हुए, मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे, तो मरे तो नहीं जटायु, अमर है। आज भी 9 लाख वर्षों के उपरांत हम जटायु का स्मरण कर, एक पंछी का, राम के भक्त। और राम और लक्ष्मण ने किया क्या, उस पंछी को वही छोड़ के आगे बढ़े, नहीं, उस पंछी के अंतिम संस्कार किए राम और लक्ष्मण ने। राम और लक्ष्मण ने सोचा कि जब हमारे पिता श्री दशरथ जी का देहांत हुआ, अंतिम संस्कार हुए, हम तो इतने अभागी, हम तो वहां उपस्थित नहीं रह सके, किंतु उनके मित्र ही, हमारे पिता के मित्र जटायु, चलो हम इनके शरीर का ही अंतिम संस्कार करते हैं। विधि पूर्वक उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और आगे बढ़े। सीता की खोज चल ही रही है तो महाराष्ट्र भर में सीते 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 कहते हुए राम दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे थे। कर्नाटक में पहुंचे। ये तो नाम, कुछ नाम प्राचीन है, कुछ अर्वाचीन या आधुनिक नाम है। तो अब का जो कर्नाटक है वहां पर किष्किंधा नाम का क्षेत्र है, हम्पी। तो वहां राम पहुंचे, वहां पंपा सरोवर है, बहुत बड़ा तालाब है, आज भी है। वहां पर भी हम कुछ वर्ष पहले गए थे। तो वहां पहले तो हुआ शबरी को मिले भगवान, राम की प्रतीक्षा में ही थी और हर रोज कुछ बेर तैयार, कुछ फल तैयार रखती थी। आज शायद राम आज आएंगे, आज नहीं आए तो कल तो जरूर आएंगे, आज सुबह नहीं आए तो शाम को तो जरूर, ऐसे प्रतीक्षा कर रही थी। तो राम पहुंच ही गए और राम को फल खिलाई। स्वयं खाती थी, क्यों खाती थी, ये देखने के लिए कि मीठे है कि नहीं, मीठा है तो थोड़ा ही पदार्थ से खाती हुई और फिर राम को खिलाती थी। शबरी का महाप्रसाद, शबरी का महाप्रसाद प्रभु खाए। जैसे भगवान भूखे तो अन्न के या फल के नहीं होते हैं, किसके होते हैं, प्रेम के भूखे होते, भाव के भूखे होते हैं भगवान। इसलिए दुर्योधन का मेवा नहीं खाए, बहुत बड़ी फीस्ट बनाए थे, पकवान बनाए थे, लेकिन पूरा अहंकार और दुष्टता उस दुर्योधन की, भगवान खाए नहीं। फिर क्या खाए, वैसे इनके घर का मेवा खाए। फिर आए विदुर के घर पर आए और वहां क्या खाए, मेवा खाए या कोई केस, केले के छिलके ही खाए, ठीक है, केले के छिलके ही खाए। तो उस माता ने वैसे केला जो खाने का होता है वो ऐसे डिब्बे में डस्टबिन में रख दिया। इतने बड़े VVIP आ गए, इतने बड़े मेहमान तो कभी आए नहीं थे, तो भ्रमित हुई कैसे कहा बिठाए, क्या खिलाए, क्या करे। तो केले ही मिले तो छील के उन्होंने क्या किया, जिसको खाना होता है वो बाजू में रख दी या फेंक दी और छिलके ही जब भगवान, हा ऐसा केला तो मैंने कभी ही नहीं खाया था, स्वीट। तो भाव को खा रहे थे भगवान, प्रेम को खा रहे थे, पी रहे थे। तो शबरी के भी भाव को, प्रेम भरे उन फलों को भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया, भक्ति से, हाँ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा भी आशीर्वाद भी दिया, आगे बढ़ो। हाँ ये जो पर्वत है उसका नाम है ऋषिमुख पर्वत, वहां के लिए तुम प्रस्थान करो। तो राम और लक्ष्मण जा ही रहे थे तो उस पर्वत के शिखर से ऊपर चोटी में विराजमान सुग्रीव और हनुमान, जामवान आदि के कई सारे मंत्री भी वहां रहा है। देखो अप! दो व्यक्ति आ रहे हैं, वो बाली के कोई जासूस तो नहीं है, कि बाली से बड़ा भय था और भय के कारण ये सुग्रीव वैसे उस पहाड़ के शिखर पर ही अपना निवास करते थे, नीचे उतरते भी नहीं थे। तो हनुमान को भेजे, हे हनुमान जाओ जाओ जाओ, पता लगवाना कौन है ये लोग। तो हनुमान ने अपनी उनके पास भी ऐसी कलाएं अपने वेशभूषा बदला करते थे। तो हनुमान एक भिक्षुक बने और राम और लक्ष्मण की ओर आगे बढ़े। तो यहां ये पहली मुलाकात हो रही है, तो दोनों ने परिचय दिया एक दूसरों का। तो हनुमान पहली बार सर्वप्रथम भेंट थी राम और राम भक्त हनुमान जी की जय। तो दोनों को बिठाए कंधे पर और पहाड़ पर ले गए और फिर वार्तालाप सुना। वैसे सुनाए थे राम लक्ष्मण अयोध्या के, फिर वन में कैसे पहुंचे, क्यों वनवास, और फिर पंचवटी से क्या हुआ और सीता की तलाश में। हाँ, कुछ समय पहले हमने देखा यहां से यान, यहां यही से तो जा रहा था। एक आलाप विलाप करने वाली स्त्री उस यान से कुछ फेंक दी तो हुआ। हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। क्या फेंका उसने? तो छोड़ दिए श्री राम, वैसे राम के हाथ वैसे कांप रहे थे। वो तो समझे थे कि ये सीता के ही कोई अलंकार कुछ आभूषण होंगे। तो पूछते हैं लक्ष्मण को, पूछते हैं नहीं मुझे क्यों, आप ही देखिए ना। तो राम को देखना मुश्किल इसीलिए हो रहा था क्योंकि राम की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, अश्रु पूर्ण उनकी आंखों से राम को देखना भी मुश्किल। इसलिए पहचानो, तुम पहचानो। तो वाह, तो राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, केयूरे अहम न जाना। ये केयूर है या केयूर ऐसे नाम के बाजूबंद, हाँ इसको तो मैं नहीं पहचान। और ये जो गले का जो या कान का कुंडल ना हम जा, इसको भी मैं पहचान नहीं सकता, लेकिन जो नुपुर है चरणों के, हाँ, ये तो मेरे परिचय के है। पादाभिवंदने नित्यम पादाभिवंदने, मैं तो हर प्रातः काल जब दर्शन किया करता था सीता जी के चरण, हाँ यही तो सीता के ही तो है ये नुपुर। तो पहचान, हाँ, कंफर्म हुआ कि रावण इस दिशा से आगे बढ़ा है। तो फिर आगे कई सारी घटनाएं घटती है, फिर बाली का वध भी है और सुंदरकांड शुरू होता है। हनुमान सीता के खोज के लिए निकलते हैं और वैसे एक टीम ही जा रही थी खोज के लिए। अब वे पहुंचे थे, जाना था श्रीलंका, तो कौन कहां तक उड़ान कर सकता है। जाम्बवान थे और भी थे, अंगद थे या हनुमान थे, तो वहां कोई नौका नहीं थी, उड़ान करके जाना था किसी हवाई जहाज में बैठकर श्रीलंका एयरवेज। तो हर व्यक्ति अपना अपना शक्ति को अजमा रहा। हाँ, कह रहा मैं तो जा तो सकता हूं, लेकिन आने की कोई वन वे टिकट होगा हमारा। दूसरे कहते हाँ, मैं आधे रास्ते तक जा सकता, फिर वहां से तो जल समाधि होगी हमारी। तो वैसे हनुमान ही एक निकले जो जा भी सकते थे और फिर आना भी संभव था। तो वे गए और खोजे अशोक वन में, विभीषण के घर को भी देखा। वैसे पूरे लंका में एक ऐसा निवास स्थान था जहां तुलसी को उन्होंने देखा और उस घर से राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 की नाद। तो वह तो वहां पहुंचे और विभीषण ने मार्गदर्शन किया तो अशोक वन में पहुंचे तो सीता के साथ मुलाकात। हाँ हाँ, आपको ले जा सकता हूं मैं, हनुमान ने प्रस्ताव रखा। चलो बैठो बैठो, सिट डाउन। तो हनुमान सीता ने नहीं, सीता तो पतिव्रता और पुरुष का स्पर्श और उनके और अकेले और उनके कंधे पर बैठने तो संभव नहीं है, मेरे पति को ही आप यहां ले आइए। तो हनुमान जी लौटे और फिर पूरी सेना के साथ, कुछ भालू थे तो कुछ बंदर वानर थे, दो प्रकार की सेना थी, और सुग्रीव आदि जामवान अंगद सब जा रहे थे। और वैसे वहां दोनों का, दो भाइयों का नहीं बन रहा था, एक राम के पक्ष के थे विभीषण और दूसरे दो भाई रावण और कुंभकर्ण का दूसरा पक्ष था। तो विभीषण भी ज्वाइन किए थे, राम के पास आए थे राम के पक्ष से। तो वो सभी अब पहुंच गए, रामेश्वर पहुंच गए। जाना कहां, श्रीलंका जाना है, तो जाने के लिए कुछ साधन चाहिए, तो पुल बनाने की व्यवस्था। तो सारी वानर सेना या कुछ कहते हनुमान एंड कंपनी नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी, वह पुल बनाई और जो भी ईंट पत्थर पेड़ पौधे पहाड़ फेंकते थे उस पर क्या लिखते थे, नल नल और नील नाम के कुछ कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन, वो स्पर्श करते थे, कुछ लिखते थे। राम का नाम लिखते ही क्या होता था, सारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो शून्य हो जाता था। हम एक छोटी सुई भी जल पर तैरा सकते हैं क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे थे, कैसे, राम, जय श्री राम। तो इनको हम निर्जीव कह सकते हैं, निर्जीव वस्तु केवल राम के नाम के स्पर्श से अगर तैर सकती है तो हम तो कैसे हैं, हम तो सजीव है। तो अगर हम राम कहेंगे, राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारा बेड़ा पार होगा, हम भीतर जाएंगे। ये सारा पूरा जो संसार है, भवसागर है, भवाम्बुधि वत्सपदम, सारा अम्बुधि, सारा भवसागर छोटा होगा, कितना छोटा, वत्सपदम, वत्स एक बछड़े का खूर से जो छोटा सा तालाब कहिए, छोटा सा, एक राउंड वन स्क्वायर इंच ऐसा, इतना बड़ा बनेगा सारा भवसागर, इतना छोटा बनेगा। फिर पदम 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 परम पदम, ऐसा भगवान का जो परम पद है, भगवान का जो धाम है, उसको प्रभु का भक्त प्राप्त करेगा जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय लिया हुआ है। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम कहा, भगवान के चरणों का आश्रय लिया हुआ व्यक्ति, और कैसे भगवान के चरण, पद पल्लवम, और जो प्लवम है जो नौका बनते हैं, भगवान के चरण ही नौका का कार्य करते हैं। जो महत पदम है, सबसे ऊंची पदवी है भगवान के चरणों को प्राप्त करना। पुण्य यशो मुरारे, ऐसा यश है मुरारी के श्री चरणों का, जो भी आश्रय लेगा ये सारा भवसागर वत्स पदम, छोटा सा वत्स बछड़े के खूर का तालाब जैसा, इतना छोटा बनेगा, फिर हम लोग ऐसे ही पार कर सकते हैं। और उसी के साथ पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, फिर इस संसार में जहां पदम पदम विपदाम, हर कदम कदम पर जहां संकट है, उपद्रव है, कई सारी समस्याएं हैं, पदम पदम या विपदाम न तेषाम, ये नहीं रहेगी उन भक्तों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, जिन्होंने भगवान के नाम का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो हुआ इस पुल पर से। देखिए जब राम को हनुमान को जाना तो हनुमान ने उड़ान ही किया, जिनकी ताकत से शक्ति से ये संभव हुआ, वो श्री राम स्वयं जब जाना चाहते हैं तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम की ये लीलाएं, ये कार्यकला, स्वयं तो पैदल ही जाना चाहते हैं। उस पुल से गए, पहुंच गए श्रीलंका में और युद्ध कांड शुरू हुआ, बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ वहां। राम की सेना और रावण की सेना, रावण के साथ कुंभकर्ण को भी जगाया बहुत नगाड़े बजा के। आप में से भी सोए हैं कोई तो वैसे है कुछ कुंभकर्ण, मैं देख रहा हूं कितने प्रयास के बाद भी जो नहीं उठे। हुआ औषधि की भी आवश्यकता थी, हनुमान गए, औषधि को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, सारा पहाड़ ही इसमें से आप चुन लो जो भी जड़ी बूटी चाहिए, मैं वानर जो हूं मैं क्या समझ सकता हूं। तो अपनी ताकत तो लगाए, पूरे पहाड़ को उठाए हनुमान। हाँ, जब वो पुल जब बन रहा था ना तो उसके लिए कई सारे पहाड़ भी उठा के ला रहे थे पुल बनाने के लिए, तो गोवर्धन पहाड़ को भी उठाने की बारी आई थी। हाँ, लेकिन इस उठा के ले ही जाने वाले थे, इतने में समाचार बस हो गया, अभी फिनिश्ड, अभी और जरूरत नहीं है। तो गोवर्धन बेचारे दुखी हुए थे कि हमारा उपयोग नहीं हुआ, तो उस वक्त उनको कहा था कि आपको तो भगवान अपने श्री चरणों से स्पर्श नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, आपको उठाएंगे अपने उंगली पर, थोड़ा धीरज धरिए अब, और कुछ 8 लाख साल ज्यादा नहीं है, प्रभु आई है संभवामी युगे युगे। तो युद्ध चलता रहा और अब एक समय तो राम और रावण दोनों ही लड़ रहे थे और बाकी सेना तो जिनको लड़ाई तो करनी चाहिए थी एक दूसरों के साथ, लेकिन वो सारा छोड़ छाड़ के सभी देख ही रहे थे। शत्रु और मित्र दोनों आमने सामने खड़े हैं, लेकिन वो आपस में लड़ने के बजाय राम और रावण की लड़ाई देख रहे, ऐसा विशेष युद्ध कांड था। तो अंतिम दिन जब आज का दिन आया, विजयदशमी के दिन, और अब कुछ ही क्षण में से कुछ ही क्षणों में वध होगा रावण का, तब राम ने कहा रामस्तम आह, राम ने कहा रावण को, पुरुषादिह नो पुरुषाद अद पुरुष यन्नह तो रावण को राम के तुम हो देखो कैसे कहते तुम हो क्या हो तुम हो पुरुष अद पुरुष अनुवाद किए हैं तुम मनुष्यों के भक्षकों के मल हो मनुष्य को भक्षक मनुष्य का कोई भक्षक कोई राक्षस होता है उसका जो मल है विष्टा है वो कौन हो तुम हो क्या पदवी है क्या गौरव मनुष्यों के जो भक्षक राक्षस उनके जो विष्टा है उनके जो मल है वो तुम हो ऐसे संबोधित राम किए रावण को और फिर क्या कांता असमक्षम असताम अपरिता श्वसते और जब हमारी कांता भारिया सीता जब हम वहां नहीं थे असमक्षम हम वहां जब नहीं थे तब असताम तुम महापापी वहां पहुंचे और तुमने सीता का अपहरण किया वैसे ही जैसे स्वस्वत जैसे कुत्ता आता है कुत्ता जब घर का मालिक या मालकिन जब नहीं होती है तो क्या करता है कुत्ता रसोई घर में या कहीं जाके कुछ लेता है और दौड़ता है ऐसे तुम कुत्ते हो या कुत्ते की औलाद हो या बिल्ली के बच्चे हो हे रावण त्यक्त त्रपस्य तुम निर्लज्ज हो और ऐसे नीच कर्म का तुमको फल आज मैं चखाऊंगा खिलाऊंगा अब कुछ ही क्षणों की देरी है हे रावण यच्छामि काल इव मैं काल बन के तुम्हारा काल बन के यहां पहुंचा हूं आप बच नहीं सकते हो अलंग अलंघ्य वीर्य मेरा जो वीर्य है शक्ति है इसका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता ये असीम है मेरी शक्ति ऐसी चुनौती राम ने दी और इसी के साथ एवं क्षिपन ऐसे डांटते हुए ऐसे धिक्कारते हुए राम ने धिक्कारा उस रावण को और अपने धनुष को धनुषी संधितम उत्सर्ज अपना धनुष और बाण उठाए और बाण को प्रत्यंचा में चढ़ाए और टंकार उसकी आवाज जब वो डोरी होती है उसको बाण लगाए उसकी आवाज तो उसकी टंकार उसकी आवाज सुन के ही रावण कांप रहा था बाणम स वज्रमिव वो बाण वज्र की तरह आगे बढ़ा और विभेद भेद भेद डाला उसने उस बाण का लक्ष्य था तद हृदयम उस रावण का हृदय को भेद लिया जय श्री राम और ऐसे ऐसे क्षण की प्रतीक्षा भी रावण कर ही रहा था अपने भाग्य का उदय भी इसी में है समझ रहा था कुछ ऐसा भी ज्ञान ऐसी भी कोई समझ थी उसकी। तो ऐसे रावण सो असृग वमन दशमुखैर न्यपद विमानात, विमान में था। तो दशमुखै, अभी दस मुखों से वो रक्त खून बह रहा था वमन। हा 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 जलपति, हाय हाय कहता हुआ विमान वैसे ही गिरा जैसे पुण्य को प्राप्त किया हुआ और स्वर्ग में पहुंचा हुआ व्यक्ति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोक विशन्ति, पुण्य को क्षीण जब होता है पुण्य क्षीण, तो स्वर्ग का व्यक्ति जैसे मृत्युलोक में पहुंच जाता, यहां उसका पतन होता है। तद्वत ये रावण भी विमान से नीचे गिरा, अपतत विमानात। ये जब हुआ तो ततो निष्क्रम्य लंकायाम या तो धान्या सहस्रशः, तो हजारों स्त्रियां जिनके पति वैसे उस युद्ध भूमि मरे हुए थे, सारे भागे दौड़े आई। मंदोदरी भी वहां पहुंची, मंद उदर जिसका, मंदोदरी क्रश उदर, सुंदर थी स्त्री अपनी पत्नी रावण की, मंदोदरी बड़ी सुंदर मानी जाती थी, इसलिए नाम से ही पता मंदोदरी। एक समय जब हनुमान ढूंढ रहे थे सीता को, तो उसने मंदोदरी को ही देखा, और सुंदर होने के कारण एक समय कुछ समय के लिए कुछ क्षणों के लिए सही हनुमान ने सीता तो नहीं है, लेकिन फिर और कुछ कार्यकलापों के साथ पता ही चला हाँ ये सीता नहीं है। तो ऐसी स्त्रियां वहां अपने मृत पतियों के पास आ पहुंची, उपाद्रवन रुदंत्यः, सारी की सारी रो रही है, स्वान स्वान बंधुन अपने पति या अपने परिवार के जो सदस्य हैं जो घायल हुए हैं या मरे हुए हैं, रुरुदुहु सुस्वरम दीना, और ग्लंतिया पीट रही है, किसको कौन पीट रहा है, आत्मानम आत्मना, स्वयं ही स्वयं को पीट रही है, अपने हाथों से छाती को छाती में या पीट रही है। हाय रे हाय हाँ, मैं तो ठीक नहीं कर रहा हूं ना, ये कुछ आपको जज नहीं रहा, इसका रियल एक्टिंग और अच्छा होता है, आपने देखा होगा एक्टिंग ठीक नहीं है, जो नेचुरल होता है स्वाभाविक। तो ये सब चल रहा था, और अब एक दो वचन ही हम, अब ये सुखदेव गोस्वामी के वचन हैं जो राजा परीक्षित को सुना रहे थे, राम की कथा सुखदेव गोस्वामी भी सुनाए हैं राजा परीक्षित को, तो उनके वचन हैं। तो वे कहते हैं वैसे ये पत्नियां कह रही है राक्षसिया मंदोदरी भी, हा हंता स्म वयम नाथ लोक रावण रावण, हे रावण औरों को रुलाने वाले, हाय हम तो मारी गई मर गई रे, नाथ हे रक्षक कम यात शरणम लंका, अब तुम जब नहीं रहे तो लंका अब किसके शरण में जाएगी, या हम अब हमारी रक्षा कौन करेंगे, त्वत् विहीना परार्दिता, और तुम तो शत्रुओं द्वारा पराजित हुए, हमारी रक्षा कौन करेगा ऐसे। न वै वेद महाभाग भवान काम वशम गतः। ये साक्षात्कार उन स्त्रियों के हैं, उन राक्षसियों के हैं, लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये सीखना है इनके वचनों से। कौन है? राक्षसी उवाच चल रहा है। कौन उवाच? राक्षसी उवाच, राक्षसियों ने कहा। ध्यान से सुनना, राक्षसियों के वचन जो भागवत के वचन ही है। न वै वेद महाभाग भवान काम वशम गतः। काम वश के कारण एक समय तो तुम भाग्यवान, निसंदेह तुम कुछ विशेष शक्तिमान व्यक्ति तो थे, लेकिन काम वशम गतः। वैसे तुम तो पंडित भी थे, जैसे रावण पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन काम वश के कारण काम अंधा हुआ। पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी देख नहीं रहा था। स्त्रिया के भवान काम वशम गतः तेजोनुभावम सीताया एन नीतो दशाम इमाम। तुम्हारी ये जो दशा हुई है, तुमने सीता और सीता के पति श्री राम के शक्ति को पहचाना नहीं, और तुमने कामवश जो कार्य किए उसी का ये सारा परिणाम है। हे रावण, कृतेशा विधवा लंका वयम च कुल नंदन देह कृतोन्न गृध्रानाम आत्मा नरक हेतवे। और आगे कहती है, आहा लंका तो और हम भी तुम्हारे बिना संरक्षक विहीन, हमारा कोई रक्षक नहीं रहा, ये तो बात है। लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी स्थिति क्या हुई है? देह, तुम्हारे देह अब अन्न बनेगा। किसका? गीध, गीध आएंगे, गृध्र कुत्ते आएंगे और तुम्हारे शरीर को अब खाएंगे। तुम्हारे शरीर का ये भविष्य, ये स्थिति। और आत्मा नरक हेतवे, दो बातें, एक शरीर एक आत्मा। तो शरीर को अब गीर खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, और आत्मा नरक हेतवे, आत्मा सीधे नरक की ओर प्रस्थान करेगी। उसे प्रातःकाल में, आज के प्रातःकालीन सत्र में हम सुनाए कैसे विभीषण ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की, ताकि उन आत्माओं को या रावण की आत्मा को नरक में नहीं जाना पड़े। और ये भी कौशलेंद्र अनुमोदिता, राम की अनुमति से, राम ने प्रोत्साहित किया वैसे विभीषण को, अंत्येष्टि कर्म करो ताकि उद्धार हो, तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसी से सांत्वना मिलेगी इन स्त्रियों को। से विभीषण तैयार नहीं थे, मरने दो जाने दो जन्नम में, कहते जन्नम कलिम गोरु हेव I don't care। लेकिन राम ने प्रोत्साहित किया और सारे अंतिम संस्कार करवाए विधि पूर्वक, यदुक्तम, ऐसे भी शास्त्रों में विधान। तो इसी के साथ ये लीला तो यहाँ आज हमें जो कहनी थी संपन्न हो रही है, और साथ आप ही अब निष्कर्ष निकाल सकते हो। और प्रारंभ में ही हम कह रहे थे कि आज के दिन लगभग नौ लाख वर्ष पूर्व राम के जमाने का जो रावण उसका तो वध हुआ। उस जमाने में राक्षसों की संख्या कुछ कम हुआ करती थी और साइज थोड़ी मोटी हुआ करती थी। आजकल साइज कुछ छोटी है, संख्या कुछ मोटी सी है। घर घर रावण, घर घर में, और राज ही किसका? रावण के राज में यथा राजा, माफ कीजिए, तो हुआ। और इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, हिस्ट्री रिपीट्स कहते हैं। तो जो हाल हुआ हमने अभी देखा, लगभग आंखों देखा, वर्णन हमने या सुना पढ़ा, तो वो हाल जो रावण का हुआ, उस रावण का वैसे ही हाल हर रावण का होता है और होता रहेगा। तो जब तक इस रावण की कामवशता है और भी कामवश या क्रोधवश या लोभवश, काम क्रोध लोभ और क्या, मद मोह मात्सर्य, ये बड़े बड़े हमारे शत्रु है, षड रिपूज कहलाते हैं, उनके लीडर है प्रभुपाद कहा करते। काम क्या, इनका कौन है? ये लीडर है, रिंग लीडर, लीडर है। और उसका छोटा भाई है क्रोध, मिस्टर एंगर, मिस्टर लस्ट, मिस्टर एंगर, प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में अंग्रेजी में लिखते हैं। तो कामात क्रोध हो भी जाए थे, काम की जब तृप्ति नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध। जब रावण के काम की तृप्ति नहीं होती, क्रोध, और क्रोध ही युद्ध है, झगड़े लड़ाइया है। तो वह ऐसा भविष्य इस संसार का, हम सभी का, अगर हम कोई चाहता तो नहीं है, पर नहीं चाहते हैं तो वह, तो इस लीला का श्रवण से भी हमें जो कोई रावणता है, ये कोई बड़ी पदवी तो है नहीं, रावणता, तो ये मिटेगी घटेगी। और राम का नाम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो जब से भगवान प्रकट हुए उनका नाम इस संसार को पवित्र कर रहा है। राम के नामों में जितनी शक्ति उस समय थी, आज भी उतनी शक्ति है राम के नाम में, और सदा के लिए उतनी बनी रहेगी। ये राम का नाम, ये कृष्ण का नाम, राम और कृष्ण से अलग नहीं है, ये बड़े बड़े नाम है जग में। सुंदर है कितने नाम? दो नाम है, फिर क्या क्या, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, और फिर दोनों को साथ में कहना है तो फिर कहो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। धन्यवाद, जय श्री राम।